श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 24वां अध्याय शीर्षक कर्दम मुनि का वैराग्य श्लोक क्रमांक 45। हरे वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्तिभावेन परेण भक्तिभावेन लब्धात्मा मुक्तबन्धनः लब्धात्मा मुक्तबन्धनः वासुदेवे भगवति सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्तिभावेन 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 लब्धात्मा मुक्तबन्धनः वासुदेवे वासुदेव को भगवती श्री भगवान सर्वज्ञ सर्वज्ञाता प्रत्यग आत्मनि प्रत्येक प्राणी के भीतर स्थित परमात्मा परेण दिव्य भक्तिभावेन भक्ति से लब्धात्मा आत्मलीन होकर मुक्तबंधनः भवबंधन से छूटा हुआ। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद, इस प्रकार वे बद्ध जीवन से मुक्त हो गए और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्थित सर्वज्ञ परमात्मा श्री भगवान वासुदेव के दिव्य सेवा में लीन हो गए। तात्पर्य, जब कोई भगवान की दिव्य भक्ति में तत्पर होता है तो वह जान लेता है कि वह परमेश्वर वासुदेव का निरंतर दास है। आत्म साक्षात्कार का यह अर्थ नहीं है कि परमात्मा तथा व्यष्टि आत्मा दोनों ही आत्माएं हैं, अतः वे सभी प्रकार से समान हैं। व्यष्टि आत्मा बद्ध होता है किंतु परमात्मा कभी बद्ध नहीं होता। जब बद्ध आत्मा को यह बोध हो जाता है कि वह परम आत्मा के अधीन है तो उसकी यह स्थिति लब्ध आत्मा आत्म साक्षात्कार अथवा मुक्त बंधन अर्थात भौतिक कलमश से मुक्ति कहलाती है। भौतिक कलमश तब तक बना रहता है जब तक वह अपने को परमेश्वर के समान मानता रहता है। यह अवस्था माया का अंतिम जाल है। माया सदैव बद्ध जीव को प्रभावित करती है। यदि पर्याप्त चिंतन तथा मनन के बाद भी कोई अपने को परमेश्वर से अभिन्न मानता है तो यही समझना चाहिए कि वह माया के जाल में ही है। परेण शब्द अत्यंत सार्थक है। पर का अर्थ है दिव्य, भौतिक कलमश से अप्रभावित। अपने को भगवान का नित्य दास समझना पराभक्ति कहलाती है। यदि मनुष्य का भौतिक वस्तुओं से लगाव रहता है तो वह किसी लाभवश भक्ति करता है तो वह विद्धा भक्ति, कलमश युक्त भक्ति कहलाती है। पराभक्ति के पालन से ही वास्तव में मुक्त हुआ जा सकता है। यहां पर अन्य शब्द सर्वज्ञ का उल्लेख हुआ है। प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा सब कुछ जानता है। मुझे शरीर परिवर्तन के कारण विगत कर्मों का विस्मरण हो सकता है, किंतु परमेश्वर परमात्मा रूप में मेरे भीतर स्थित हैं, अतः वह सब कुछ जानता है। फलतः मुझे पूर्व कर्मों का फल मिलता है। मैं भूल सकता हूं, किंतु भगवान मेरे पूर्व जन्म के सुकर्मों या दुष्कर्मों के अनुसार मुझे सुख या दुख प्रदान करता है। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि उसे गलत जीवन के कर्मों का स्मरण नहीं है अतः वह बंधन से मुक्त हो गया। बंधन तो होंगे ही, किंतु किस प्रकार के होंगे इसका निर्णय परमात्मा द्वारा होगा जो उनका साक्षी है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्तिभावेन
लब्धात्मा मुक्त बंधनः। इस प्रकार वे बद्ध जीवन से मुक्त हो गए और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्थित सर्वज्ञ परमात्मा श्री भगवान वासुदेव के दिव्य सेवा में लीन हो गए। हरे कृष्ण। यहां मैत्रेय मुनि कर्दम मुनि के वैराग्य के बारे में वर्णन कर रहे हैं, किस तरह से स्वयंभू मनु जो महाजनों में एक है, उन्होंने अपनी पुत्री देवहूति को कर्दम मुनि के हाथों में सौंपा, विवाह कराया। देवहूति ने एक आदर्श पत्नी के रूप में, हालांकि वो राजपुत्री थी, अपने भोग का परवाह न करते हुए एक आश्रम स्थिति में जो जंगल के बीच स्थित था, वहां कई सालों तक कर्दम मुनि की, अपने पति की बहुत अच्छी तरह से मदद की, उनकी भक्ति में, भगवान की भक्ति जो वो कर रहे थे, और उनका भक्ति था ध्यान लगाना, तो उसके अनुकूल मदद कर रहे थे। कर्दम मुनि ने कई सालों के बाद ये जानते हुए कि देवहूति की इच्छा क्या है, एक भव्य विमान जो एक शहर के समान विशाल था, जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह जा सकता था, बड़े योगी थे वो, उसका निर्माण किया और देवहूति को साथ में लेकर भ्रमण किए कई सालों तक, हजारों सालों तक, और संपूर्ण रूप से देवहूति को संतुष्ट किया। तत्पश्चात वापस लौटने पर नौ रूप में विस्तृत होकर माता देवहूति के द्वारा नौ पुत्रियों का जन्म हुआ देवहूति को। पर फिर भी माता देवहूति जब देखी कि शायद कर्दम मुनि अपने कर्तव्य को पूर्ण करके अब संन्यास ग्रहण करके घर छोड़ के चले जाएंगे, तब अपना शोक व्यक्त किया कि मैं ये सब भौतिक जीवन में लग गई, पर मेरा जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है उसके बारे में मैंने कुछ विचार नहीं किया, उसका कुछ इंतजाम मैंने नहीं किया। और तब कर्दम मुनि उन्हें और एक पुत्र प्रदान किए जो थे कपिल देव, जो भगवान के ही अवतार हैं, जो सांख्य योग का वर्णन किए, सही सांख्य योग देवहूति पुत्र। तो जब भगवान कपिल गर्भ में थे देवहूति के, तब ब्रह्मा जी आकर कहे कि तुम्हारे पत्नी जो देवहूति के गर्भ में जो अभी जो गर्भ है वो साक्षात भगवान है कपिल मुनि, और बहुत प्रसन्न हुए कर्दम मुनि। और जैसे कपिल देव जन्म लिए और थोड़े बड़े हुए, तब उनको जाकर प्रणाम किया कर्दम मुनि ने, ये जानते हुए कि वो साक्षात भगवान के ही विस्तृत रूप है, एक अवतार है, और उनसे अनुमति मांगी कि अब मैं वैराग्य लेके संन्यास ग्रहण करके पूरे विश्व में भ्रमण करूंगा और इस तीन गुणों से परे होकर अपनी जो मनुष्य जीवन की सर्वोच्च स्थिति है उसे मैं प्राप्त करूंगा। ये बड़ा एक अजीब प्रसंग है, सीखने योग्य है। कर्दम मुनि निकल रहे हैं भगवत साक्षात्कार के लिए, जबकि भगवान खुद उनके पुत्र के रूप में घर में। तो सवाल उठ सकता है कि ऐसे कैसे, भगवत साक्षात्कार के लिए निकल रहे हैं भगवत साक्षात्कार, और मालूम है कि यही भगवान है। इसके कई कारण हो सकते हैं, पर एक कारण, एक समझ ये है कि एक आदर्श उदाहरण स्थापित करने के लिए कर्दम मुनि ने अपना जो कर्तव्य है एक समय पर वैराग्य स्वीकार करके जीवन का जो लक्ष्य है उस पर ध्यान बढ़ाना। जीवन एक तैयारी है, मृत्यु उसकी परीक्षा है। लाइफ इज ए प्रिपरेशन, डेथ इज द एग्जामिनेशन। जैसे जैसे परीक्षा पास आ जाता है तो विद्यार्थीगण टीवी देखना कम हो जाता है, खाना पीना घूमना फिरना कम हो जाता है, और पढ़ाई बढ़ जाता है, इच्छा ना हो फिर भी। क्यों? क्योंकि मालूम है भविष्य का क्या। ठीक है, अभी तो खुश है, अभी आनंद लेंगे, पर बाद में पूरे साल वही क्लास में फिर से आनंद नहीं आएगा, फिर अगले गंतव्य स्थान को जाना है, क्योंकि हमारे जो मित्र है वो लोग अगले चले जाएंगे, हम इधर ही रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इज्जत का क्या होगा हमारा। तो न चाहते हुए भी स्वेच्छा से तपस्या करते, स्वेच्छा से तपस्या का मतलब वही है, स्वेच्छा से कुछ तकलीफ स्वीकार करना। तो ये एक आदर्श उदाहरण देने, और दूसरी बात है भले भगवान घर में हो पर उनका साक्षात्कार करना जरूरी है। साक्षात्कार मतलब योग्यता प्राप्त करना भगवान की सेवा के लिए। जब तक वो योग्यता नहीं है, भगवान भले सामने हो फिर भी देख नहीं पाएंगे हम उनको, उनकी ठीक से सेवा नहीं कर पाएंगे। भगवान तो है यहां, विग्रह भगवान से अभिन्न है, हम क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि अभी तक हमारे आंख जो है वो अज्ञान से भरा हुआ है, बद्ध अवस्था में है, और इसीलिए अगर भगवान सामने आ भी जाए तो उनको पहचान नहीं पाएंगे, और पहचाने भी तो ठीक से सेवा नहीं कर पाएंगे क्योंकि योग्यता नहीं हमारी। तो भले पुत्र, जैसे भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, कंस पहचान नहीं पाया, मारने गया, हिरण्यकशिपु ने भी देखा नरसिंह देव को, पर हृदय में योग्यता नहीं थी, बद्ध अवस्था था, ईर्ष्या था, काम क्रोध लोभ से भरा हुआ था, और इसीलिए भगवान को भी देख नहीं पाया। सेवा करना तो दूर, संतुष्ट करना तो दूर की बात। और दूसरा और एक कारण यह भी है कि भगवान को देखने से ज्यादा उनकी सेवा करना महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं दामोदर लीला में माता यशोदा भगवान को स्तनपान करा रही थी, और जब दूध रखा हुआ था, दूध उबलने लगा, तो कृष्ण को नीचे रख के दूध के पीछे भागी। तो कोई कह सकता है ये मूर्खता है, कृष्ण को दूध पिला रही है, इससे बढ़कर क्या हो सकता है, भगवान को अपने शरीर से स्तनपान कराना उसके सामने, और कौन सा दूध महत्वपूर्ण है। कितना किलो आजकल दूध, 38, 38, मैं सिर्फ दूध पीता हूं मालूम नहीं कितना, 38 रुपया लीटर 38 रुपया लीटर, ठीक है चलो 5 लीटर रखा था, 38 पचे कितना हा? 100, ठीक है 5000 साल पहले बहुत कम था वो घर में ही उगता था, घर में ही निकलता, तो कौन सा बड़ा मूल्य चीज है? 5 किलोमीटर उबल गया तो उबलने दो ना, भगवान को छोड़ के दूध के पीछे भागना, हम जपा करते रहते दूध उबल गया तो जप माला फेंक के भागते, ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को जप महत्वपूर्ण है, दूध उबल दूध सबसे पहले रखो ही मत जप के समय नहीं तो जप इधर चलता रहेगा ध्यान उधर रहेगा सुबह सुबह कर लेना अच्छा है इसीलिए तो डायरेक्टली भगवान की सेवा कर रही है, साक्षात भगवान की दर्शन कर रही है, सेवा कर रही है और वहां दूध उबल रहा है, दूध उबल नहीं चाहिए, इसीलिए कृष्ण को अप्रसन्न किया, कृष्ण क्रोधित हो गए, गुस्से से उन्होंने मटका फोड़ा, कृष्ण को गुस्सा दिलाया माता यशोदा ने, अप्रसन्न किया, असंतुष्ट किया, जबकि जीवन का उद्देश्य है धर्म की पराकाष्ठा है, धर्म की परिपूर्णता है, समसिद्धिर हरितोषणम स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य, जो कुछ भी कर रहे हो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, और ये दूध के पीछे भगवान को छोड़ दिया, असंतुष्ट किया, क्रोधित किया, अब फिर भी उस लीला को सत्यव्रत मुनि गाते हैं और 5000 साल के बाद आज भी हम भी गाते हैं, एक एक महीना गाते हैं दामोदर लीला को, और जब भी इस लीला के बारे में सुनते हैं तो लोगों के आंखों में आंसू बहती है, वाह क्या यशोदा माँ, क्या तेरा प्रेम, वाह रे काना, क्या क्या है ये, फिर शास्त्र के विरुद्ध है? नहीं, ये भी कृष्ण की सेवा है और वो भी कृष्ण के लिए कर रही थी, और वो खास करके ऐसा दूध था, वो जो खास दूध था और कृष्ण के लिए कोई अच्छे अच्छे व्यंजन बनाने के लिए रखा था, तो भले यहां कृष्ण असंतुष्ट हुए बाहरी रूप से पर हृदय से संतुष्ट हुए, क्यों? आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, अनुकूल, ये अनुकूल था भगवान के प्रति, भगवान से प्रेम था, भगवान के लिए जो व्यंजन है वो खराब नहीं हो जाए, भगवान की चिंता में, अभी प्रभु थोड़ा पैर रोड़, एक मिनट थोड़ा सहन करो, तुम्हारे लिए और भी अच्छा व्यंजन बना रही हूं, जबकि चाणूर और मुष्टिक जब लड़ रहे थे तो भगवान को आनंद आया, कंस के साथ जब लड़े तो भगवान को संतुष्ट हुआ, आनंद आया लड़ने में, थोड़ा आजा हाथापाई हो जाए, खास करके कोई टेबल टेनिस खेलता है, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं हम लोग, शुरू शुरू में खेलता था तो 15 मिनट में थक जाते थे, पर मैं एक बार नेशनल चैंपियनशिप देखने गया, बेंगलोर में हुआ था एशियन चैंपियनशिप टेबल टेनिस, और वहां गेम शुरू होना था शाम को, तो ये लोग दोपहर को शुरू की, फाक फाक फाक, फिर ऐसा आधा घंटा एक स्ट्रोक, फिर आधा घंटा दूसरा, एक घंटे के बाद उनको थोड़ा वार्म अप हो गया, जब हमारा कूल डाउन होने का टाइम आता है उनका वार्म अप होता है, जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं उनको वार्म अप होने के लिए कम से कम आधा पौना घंटा पूरा खेलने के बाद अब आ गया, चलो शुरू होता है, क्षत्रियों को भी ऐसा ही, क्षत्रियों को खून देखने से वार्म अप होता है, चलो अभी मजा आ गया, तूने मारा ना, खून निकाला तूने, अब निकालता हूं, आज तुझे यमराज का दर्शन करा दो, ऐसे थप्पड़ मार के इसे मजा नहीं आया उनको, 4-5 लोगों को मारने के बाद फिर वार्म अप होता है, कुरुक्षेत्र में ऐसे ही था, इतने लोगों को देख के उनका वीर्य रस बढ़ता है, तो चाणूर मुष्टिक के साथ, कंस के साथ जब भगवान ने युद्ध किया या कुश्ती लड़े, तो चाणूर और मुष्टिक और कंस ने भगवान को आनंद दिया, अच्छा लगा भगवान को, आह मजा आ गया। पर उसको हम भक्ति नहीं कहते, क्यों? क्योंकि वो अनुकूल भाव से नहीं कर रहे थे, उनकी भावना क्या थी? द्वेष की थी, कृष्ण को मारने का भावना अनुकूल नहीं थी। तो हालांकि वो कृष्ण को प्रसन्न किए, संतुष्ट किए, पर उनको लाभ नहीं मिला क्योंकि उनका भावना अनुकूल नहीं था। जबकि माता यशोदा भगवान को अप्रसन्न की, पर फिर भी वो भक्ति की पराकाष्ठा है क्योंकि अनुकूल भाव कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए, कृष्ण के लिए सर्वस्व, कृष्ण को एक बूंद पसीना नहीं देखने के लिए नरक में जाने के लिए तैयार थी यशोदा माई, हजारों बार मरने के लिए तैयार थी कृष्ण को एक बूंद पसीना से बचाने के लिए। ये भक्ति जो है ये बड़ा अजीब चीज है, ये सबको समझ में नहीं आता है, लोगों को लगता है ये बड़ा भावुकता है। एनीवे बाद में चर्चा करेंगे, कर्दम मुनि की बातें कर रहे हैं हम लोग। तो कर्दम मुनि इनको छोड़कर, कपिल देव को छोड़कर अपने कर्तव्य के रूप में भगवान की साक्षात्कार करने हेतु, ताकि सिर्फ अब की ठीक है अभी वो है हम है, मैं मर जाऊंगा तो, बोले नहीं मैं हमेशा के लिए भगवान की सेवा करना चाहता हूं, ये शरीर तो नश्वर है, मैं भगवत धाम में जाकर हमेशा के लिए सेवा करना चाहता हूं, उसकी तैयारी करने हेतु और भगवान की प्रसन्न करने के हेतु। अगर वो रहते तो शायद कपिल मुनि बोलते ही नहीं माता देवहूति को, वो बोलते नहीं तो फिर सांख्य योग को समझ में हमको कैसा आता। तो उस लीला में भी मदद करने के लिए वो निकल गए वहां से, और इस तरह से कपिल ने, भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को सांख्य योग दिया, और जिसका अध्ययन हम भागवत में पढ़ते हैं तीसरे स्कंद में विस्तृत रूप से बहुत ही सुंदर से। और ये सांख्य योग जो है परिपूर्ण अवस्था में भक्ति योग। अब यहां भ्रमण करते 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 अंत में कर्दम मुनि की स्थिति क्या हुई, ये यहां वर्णन हो रहा है इस श्लोक में। वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्तिभावेन लब्धात्मा मुक्त बंधन। पहला भाग जो है यहां भगवान के बारे में वर्णन हो रहा है। वसुदेव के पुत्र वासुदेव, और वासुदेव का दूसरा अर्थ है जो सर्वव्यापी है, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। सर्वव्यापी, हम सर्वव्यापी नहीं है, हम यहां हैं तो बगल में नहीं है, घर में है तो ऑफिस में नहीं है, हम भी होते तो कितना अच्छा होता, घर में भी है एक एक विस्तृत रूप, ऑफिस में भी है। हम नहीं, हम एक जगह है तो दूसरे जगह नहीं है। तो वासुदेवे भगवती सर्वज्ञ, यहां तत्पर्य में प्रभुपाद खास लिखते हैं ये सर्वज्ञ अर्थ जो उल्लेख हुआ है, सर्वज्ञ। प्रभुपाद जब छोटे थे तो उनके शिक्षक ने उनको प्रश्न पूछा था कि तुम बुरा काम करते हो, पिछले जन्म में किया हुआ बुरा काम किसने देखा है, कौन है उसका साक्षी, कौन है? अगर कोई आके एक थप्पड़ मार दे जोर से, आप सड़क पे जा रहे हो, कोई आके एक थप्पड़ मारे कान पे, क्यों मारा? पिछले जन्म में तूने मुझको मारा था। तू क्या था, तू देखा था, तेरे को क्या प्रूफ क्या है? कोई भी कुछ भी कर सकता, मर्डर करने के बाद बोला तू पिछले जन्म में किया था इसलिए अभी कर रहा हूं मैं, प्रूफ कौन है, साक्षी कौन है? कोई भी कुछ भी कर सकता है, फिर वो बोलता है पिछले जन्म का था इसलिए हो रहा है। तो ये साक्षी है उपदृष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन पुरुषम परम, गीता में भगवान कहते हैं उपदृष्टा, उपदृष्टा मतलब देखने वाले, सुपरवाइजर, सुपर मतलब ऊपर और देखने वाले, सुपरविजन बोलते हैं ना, सुपरवाइजर, उपदृष्टा और अनुमंता, उनकी अनुमति के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, वो अनुमति देते हैं। और कैसा अनुमति देते हैं, तुम्हारे पिछले जन्म की इच्छा क्या थी, पूरे जीवन भर कुछ इच्छा, हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है और इच्छा को पूर्ण करते करते मर जाते हैं हम लोग, शरीर मर जाता है, इच्छा नहीं जाता, वो अगले जन्म में भी इच्छा रहता, उस सुगंध रहता है, वो दुर्गंध, एक्चुअली सुगंध नहीं, भौतिक इच्छा है तो दुर्गंध अभी भी रहता है वो। और अगर हमने उसके लिए कुछ कर्म किया है तो भगवान वो वस्तु प्रदान करते हैं और याद दिलाते हैं अंदर से, तेरे को यही चाहिए था ना, ले ले, कर कर जो करना है, फुल फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। इच्छाएं तो बहुत है, हर एक एमपी पीएम बनना चाहता है, एक बनता है दूसरे कहीं पीछे रह जाते हैं, क्यों, किसी ने कुछ कुछ योग्यता प्राप्त की थी। तो ये उपदृष्टा जो है, अनुमंता, ये परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वज्ञ प्रत्यगात्मनि, हमारे हर एक जीव में, हर एक जीव के अंदर वही परमात्मा है, इन्हें आपका परमात्मा मेरा परमात्मा अलग है, हर एक जीव में। जैसा 1 करोड़ मटका रखो पानी भर के, उसके ऊपर अगर सूरज चमकेगा तो सूरज के जो प्रतिबिंब है हर एक मटके में आएगा, वो सूरज और वो सूरज, ये अलग सूरज, ये अलग सूरज नहीं, वही सूरज है, प्रतिबिंब एक ही है। इसी तरह से हर एक जीवात्मा के अंदर जो परमात्मा समावेश है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय शेरजुन तिष्ठति सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में है वो। पर ये परमात्मा जो है प्रत्यगात्मा, ये आत्मा और हमारा आत्मा दोनों एक ही है, ये समझना सबसे बड़ी माया, माया का अंतिम बंधन यही है। बड़े बड़े योगी भी इसमें फंस जाते हैं, ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, देखते और बोलते ओहो ये मेरा ही फोटोग्राफ, ध्यान करते हैं यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान, फिर समाधि में जाते हैं, अरे चतुर्भुज स्वरूप है ये, कितना सुंदर हूं मैं, और उसमें वो लीन होना चाहते हैं। बल्कि इस योग की परिपूर्णता क्या है, इस योग की परिपूर्णता है उनकी सेवा करना, परमात्मा को अपना प्रभु मानकर उनकी सेवा करना, ये योग की परिपूर्णता है। ये गीता में भगवान सब योगों का वर्णन करते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, सब करने के बाद अंत में क्या कहते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मदगतेन अंतरात्मना। अंतरात्मा में साक्षात्कार करता है, फिर क्या करता है, देखने के बाद हैंडशेक करके गले नहीं लगा के एक मिल नहीं जाता उसमें, बोले नहीं, श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धा पूर्वक उसकी भजन करता है, उनकी भजन करता है, समय युक्त तमो मत, वो सबसे श्रेष्ठ योगी है। तो यहां बता रहे हैं उसको प्राप्त करने का तरीका क्या है, उस परमात्मा को साक्षात्कार करने का तरीका क्या है, परेण भक्ति भावेन, दो शब्द उपयोग किया गया है, परेण भक्ति भावेन, भक्ति भाव मतलब भगवान की प्रेममयी सेवा। अब सेवा दो प्रकार से हो सकती है, विद्या भक्ति और पराभक्ति। विद्या भक्ति का मतलब क्या, प्रभु आप भी खुश मैं भी खुश हूं, ये मेरे के लिए करा दो, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, ठीक है ना, डील हो गया, आप भी खुश मैं भी खुश। विद्या भक्ति मतलब या मुक्ति या भुक्ति, या जो चीज नहीं है वो प्राप्त करना, भोग करने के लिए, ये दिला दो ये दिला दो ये दिला दो, उसलिए भक्ति कर रहे हैं, या ये हटा दो मेरे जीवन से, ये हटा दो, ये दिला दो, दिला दो मतलब भुक्ति, हटा दो मतलब मुक्ति। पर पराभक्ति का मतलब है आप जो भी देंगे वो मंजूर, उसके अलावा उसके ज्यादा उससे कम मुझे कुछ नहीं चाहिए, और आप जिस स्थिति में भी रखे हो वो मेरे लिए अच्छा है, उससे मैं मुक्त होना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप जो भी मेरे जीवन में कर रहे हो उससे श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता। यह भक्त को पूरा विश्वास है, उसे मालूम है भगवान मेरे शुभ चिंतक हैं, और वो मेरे जीवन में जो कुछ भी कर, जो कुछ भी दिया है उससे अगर ज्यादा देते तो मैं पथभ्रष्ट हो जाता। धन्यवाद प्रभु, इसीलिए आप नहीं दे रहे हो। एक छोटे बच्चे के हाथ में वो मांगता है, कांच का टुकड़ा इतना बड़ा वाला मेरे को चाहिए, आईना ठा टूट गया इतना लंबा, उसको लगता है तलवार जैसा खेलूंगा मैं, नहीं चाहिए, थप एक थप्पड़ पड़ेगा बस नहीं मिलेगा तुझे, नहीं चाहिए चाहिए, नहीं देते। पर भक्त को मालूम है कि भगवान मेरे शुभ चिंतक है, जब जितना जो चीज देना है वो देंगे, मुझे क्या करना है उनकी सेवा करना है, उनके मार्गदर्शन पे चलते रहना है। और जहां तक कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, वो अपनी सेवा में चूकेंगे नहीं, हम अपनी सेवा में चूक जाते, वो अपनी सेवा में, वो अच्युत है, वो कभी चूकेंगे नहीं, अब उनका जिम्मेदारी में कभी चूकेंगे नहीं, पर हमें विश्वास नहीं है। प्रभु बजा रहा हूं मैं, कीर्तन कर रहा हूं, याद रखना, 3 महीने से आया हूं, 64 माला किया हूं, याद दिलाते रहना। पर भक्त को मालूम है वो कभी चूकेंगे नहीं, चूकना हम चूकते हैं, क्योंकि हम अच्युत नहीं है। तो पराभक्ति का मतलब है वो भक्ति जहां प्रेम से किया हुआ कार्य, बस मुझे मालूम है प्रभु आप देने वाले, मैं अच्छी तरह से आपको प्रसन्न करूं, मैं आपकी संतुष्टि करूं, आपके आज्ञा के अनुसार चलूं। पर एक बड़ी समस्या है। समस्या क्या है? ये दो अभी बंधे हुए हैं हम लोग, और इसीलिए ठीक से सेवा नहीं कर पाते। कैसे बंधे हुए हैं? जो बंधा हुआ आदमी कैसा सेवा करेगा? आपने भगवत गीता में एक चित्र देखा है, कृष्ण ऊपर खड़े हैं, उनके नीचे 3 माताजी लोग हैं, एक काली, एक काले वस्त्र वाली या नीला, दूसरे लाल वस्त्र वाली, लाल साड़ी वाली, और तीसरे पीली साड़ी वाली माताजी या सफेद वाली, वो थोड़ा बदलते कभी कभी, काला या नीला थोड़ा शेड बदलते, पीला या सफेद, बीच वाली नहीं बदलते, लाल एकदम। ये 3 माताजी लोग चला रहे कठपुतली जैसे, वो ऐसा उठाए तो हम ऐसा उठते हाथ, वो ऐसा करे तो नीचे जाता है हाथ, कठपुतली जैसे हम लोग काम कर रहे हैं। त्रिभीर गुणमयैर भावैर एभिः सर्वमिदं जगत्, 3 गुण हमको चला रहे हैं। आप बोलेंगे प्रभु जी कुछ दिखता तो नहीं है, रस्सी एकदम खुला हूं मैं मुक्त हूं, कौन बोल रहा है बंधा हूं, कहां बंधा है, देखो चेन है क्या, 3 चेन से बांधे हुए हैं, एक नहीं, भले आपको दिखे या नहीं दिखे 3 चेन से आप बंधे हुए हो, एक लोहे का, दूसरा सिल्वर चांदी का, और तीसरा सोने का। लोहे का मतलब तमोगुण, गुण का मतलब ही रस्सी होता है, क्या सिल्वर क्या बोलते हैं, चांदी का मतलब रजोगुण, और सोने का मतलब सत्वगुण। कोई सोने का चेन बांधे बोले कितना अच्छा है, बांधे रहूंगा, इच्छा ही नहीं होता है खोलने का, हमारी जीवन की अंतिम आशा है सोने के चेन पहने रहूं। तो सत्वगुण में आके हम समझते हैं कि हम अपना जीवन सफल हो गया, पर तीनों बंधे हुए हैं, और वो जिस तरह से चलाते हैं हम करते हैं। अब बोलेंगे कैसा बंधा हुआ हूं मैं, कैसे बंधा हुआ हूं, बोलो, मैं मुक्त हूं, उड़ता पंछी हूं मैं, जहां चाहे जा सकता हूं, अब भी मैं इस प्रवचन से उठ के रंकाड़ा जा सकता हूं, कोई मेरे को पकड़ के देखने दो, पुलिस भी आएगी तो उसको बोलूंगा मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ ले दो मेरे को। अब क्या बोल रहे हो प्रभु जी आप, पूरा संडे में राम हो रहा, खुला आदमी कहीं भी जा सकता हूं, अब भी बार में जा सकता हूं, पी सकता हूं, कोई भी कह सकता है कैसा मैं बंध हूं, बंधन में हूं। अर्जुन ये प्रश्न करता है, अर्जुन को मालूम है, भगवान को मालूम है कि कलयुग के होशियार वाले, आप जैसे बड़े होशियार वाले भक्त ऐसा प्रश्न पूछने वाले, पहले से ही अर्जुन से सब पूछा के उत्तर दे दिया है। 21 आता है ना क्वेश्चन आंसर, परीक्षा में सारे इमरजेंसी वाले आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन IMP सब भर भर के भगवद गीता में भर दिया। जो तैयारी करेगा 21 क्वेश्चन वो जरूर पास हो जाएगा, पर अच्छा ट्यूशन टीचर होना चाहिए जो सिखाए। परिप्रश्न सेवया तत्वदर्शी, जिसको मालूम है अच्छी तरह से। तो वहां अर्जुन प्रश्न पूछता है, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तोयम, किस चीज से प्रयुक्त होकर प्रभु पापम चरति पुरुषः, मुझे मालूम ही नहीं करना है, मेरे लिए अच्छा नहीं है ये, पर मैं करता हूं, अनिच्छन्नपि इच्छा नहीं है, बलादिव नियोजित बलपूर्वक, मानो कोई चैन से पकड़ के खींच के ले जा रहा हूं, आपको बुलडोजर में एक चेन में बांध के फुल स्पीड में अगर चालू कर दे आप बुलडोजर को खींच सकते हो वापस, खींचा खींचा जाना है, बलादिव उससे हजार गुना शक्तिशाली है कि हम निस्सहाय भाव से खींचे जाते। काम येश क्रोध येश रजो गुण समुद्भव, हमारी इच्छा नहीं होती पर काम वासना करता है, हो जाए एक एक जस्ट चाल हो जाए, नहीं, अच्छा नहीं मेरे लिए, आई जी खींचा जाते हैं हम लोग। उसमें लिखा भी हुआ सिगरेट स्मोकिंग इंजुरीज टू हेल्थ, एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट अभी मना है दारू का, तो सारे दारू कंपनियों ने बिस्लेरी बॉटल बना दिया, क्या बोलते पानी का किंग फिशर, बिस्लेरी बिस्लेरी इतना दिखता है किंग फिशर, उनका एडवर्टाइजमेंट भी हो गया, सबको मालूम है किंग फिशर क्या, मैकडॉनल्ड्स प्योर वाटर सिर्फ ये बॉटल में। तो इस तरह से खींचे जाते हैं हम लोग, सूक्ष्म रूप से बंधे हुए हैं, और हमारी बुद्धि एक सत्संग में आने के बाद, भक्तों के संग में आने के बाद समझ में भी आता है क्या करना है हमें। हमें मालूम है सुबह उठ के मंगल आरती में आना बहुत अच्छी बात है, फिर उठते हैं टर अलार्म भी रखते हैं पिछले रात को, और वो बजता भी है, हम सुनते भी हैं उठते भी हैं, तो बाद में वो जो तमोगुण की रसी होती है वो माताजी होती है, सब सब टांग करती है तो हम भी टांग। तो इच्छा होती है पर गुण बांध के खींच लेते हैं, अनिच्छन्न भी इच्छा नहीं है बलादिव, क्यों, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते जो हम नहीं है एक्चुअली, पर अभी शरीर और आत्मा, शरीर एक्चुअली मरा हुआ है, हमेशा मरा हुआ है, कभी जिंदा था नहीं और कभी था नहीं होगा भी नहीं, जब तक आत्मा है तब तक वो जिंदा है, शरीर जब निकल जाए आत्मा जब निकल जाए शरीर से, उस शरीर को टुकड़े टुकड़े करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, चिल्लाता भी नहीं हो, पर जिसके अंदर आत्मा अभी भी है, कोमा में भी हो उसको एक घुसा मारो तो उठ जाएगा, बोले क्या कर रहा है, फिर सो जाएगा। शरीर मरा हुआ है तो फिर तकलीफ किसको, तकलीफ किसको, तकलीफ किसको हो रहा है? क्योंकि शरीर हमेशा मरा हुआ है, आत्मा नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, आग उसको जला नहीं सकता, चाकू उसको काट नहीं सकता, तो तकलीफ हो किसको रहा है? शरीर हमेशा मरा हुआ है, आत्मा को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, आत्मा को ये सब चीज है नहीं, पर काटो तो चिल्लाते हम लोग, क्यों, कौन चिल्ला रहा है? माया, आप क्यों चिल्लाते हो? अगर मैं चाकू लेके काटा तो माया चिल्लाना ना, आप क्यों चिल्लाते हो? एक्चुअली आत्मा अपने आप को शरीर समझ रहा है, सूक्ष्म रूप से चेन बांधा हुआ है, वो है मन बुद्धि और अहंकार। आत्मा का अहंकार से कनेक्शन है, अहंकार का बुद्धि से, बुद्धि का मन से, और मन का इंद्रियों से। तो आत्मा अगर शरीर को खींच, अगर मैं यहां बैठा हुआ हूं, वो थे उधर से एक चेन लगा के दूसरे को, उधर से चेन लगा के उधर दूसरे को, और वहां खींचा तो मैं भी खींचा जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो कनेक्टेड है, यहां से यहां, यहां कनेक्टेड है, सूक्ष्म रूप से कनेक्टेड है ये। उदाहरण के लिए अगर मैं हॉस्पिटल जाता हूं, हॉस्पिटल में आईसीयू में कोई तो मेरे रिश्तेदार एडमिट है, मेरे माताजी या पिताजी, कोई बहुत ही निकटतम रिश्तेदार एडमिट है आईसीयू में, और वहां जाके देखता हूं आईसीयू में कोई लेटा हुआ है, उनको मैं कोई दवाई ववाई दे रहा हूं, और बगल वाला बेड वाला लुढ़क जाता है। आईसीयू ना, कभी कुछ भी हो सकता है। तो अब क्या बोलेगे, क्या बोलते हो? गेला, कहा जा गेला, ठीक है, और आपने बिजी पाव खाओ। पर अगर जिस व्यक्ति को आप पाव खिला रहे हो वो लुढ़क जाए, तो इतना रोते हो, शून्यतम जगत सर्वम, क्यों? बगल वाला लुढ़का तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, गेला, ये संसार का नियम है वो, पर हे गेला तो काय झाला, क्यों हुआ? सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है, क्योंकि सूक्ष्म रूप से हम उस व्यक्ति से बंधे हुए हैं मन से। जनस्य मोहोयम अहम ममेति, सामने गाड़ी खड़ा है, उसको किसी ने पत्थर मार दिया, कलियुगा मध्ये का झाला, पर तुम्हारा गाड़ी जो अभी कल खरीद के लाया हो उसके ऊपर पत्थर मार दिया, तो अपने हृदय के ऊपर पत्थर लगता है, बल्कि उधर खड़ा है 20 फुट दूर, और यहां लगता है कोई इसी ने पत्थर मार दिया। क्यों? क्योंकि ये मादा है, और उस पर जो हुआ मुझे भी हुआ, इस तरह से ये मेरा शरीर है, हर रोज आईना में देख देख कर मैं हूं ये, नहीं नहीं तू ऐसा है, मैं ही हूं। क्या मेरा हाथ, वाह, साबुन लगा के ये करके चिपका के कितना सुंदर, क्या मेरा शरीर, ये मैं हूं। बोल बोल के उसको कुछ भी कटा, मेरा शरीर। तो ये शरीर जो है धीरे धीरे विस्तृत होता है। त्वयो मिथोर हृदय ग्रंथि माहुर अत सुत क्षेत्र सुताप्त वित्तय जनस्य मोहोयम अहम ममेति, ये मेरा है, वो मेरा है, वो भी मेरा, वो भी मेरा, उसका मेरा का मेरा, मेरा मेरा ये है, और उसका जो है उसको भी कुछ हुआ तो मेरे को भी तकलीफ, सब चेन बनते जाता है। तो बंधन 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 करके जो भी कहां भी कुछ होता है इधर चेन खींचता है, वो बंधन है। और वो बंधन के कारण मृत्यु सबसे दर्दनाक है, सबसे दर्दनाक मृत्यु है। क्योंकि अच्छा, कोई एक व्यक्ति गुजर गया हमारे जीवन में, हमको बहुत दुख लगता है, घर का टीवी किसी ने उठा के भाग गया तो दुख लगता है, अरे एक इतना पैसा दिया था चला गया, कुछ भक्त को दुख नहीं होता है, बोले भगवान ने अच्छा कर दिया, माया दूर कर दिया, कुछ भी चला जाता है। अच्छा बाद में पता चला कि हाथ का कुछ तो गैंग्रीन हो गया, काटना पड़ेगा, और अरे अरे काटना पड़ेगा हाथ को, कितना दुख होता है। पर मृत्यु का मतलब क्या, सारे रिश्तेदार, सारे बंधु बांधव, सारी चीज जो आपने एकत्रित किया है, सब एक साथ खींचा जाएगा। जैसे आप कपड़ा पहने हुए हो, कपड़ा बाहर निकाल के रहे, उसको कोई उठा के ले गया तो ठीक है, कपड़ा पहने उसको भी खींचा, आप भी खींचा जाओगे ना उसके साथ साथ। तो इस तरह से जो भी है वो खींचते से बहुत दुख होता है। तो मुक्त बंधन ये कैसा हो सकता है, इसका मतलब क्या हम शरीर को छोड़ के आत्मा ऐसे घूमने फिर के वापस आके बैठते हैं क्या? नहीं, शरीर तो नहीं, मृत्यु तक ये हमारे साथ रहने वाला है। तो फिर मुक्त होने का मतलब क्या? लब्ध आत्मा जो समझ गया है, लब्ध मैंने प्राप्त किया है आत्मा, और आत्मा का क्या है स्वरूप, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, इस दासत्व के अलावा जो भी उपाधि है वो क्षणभंगुर उपाधि है। मैं महाराष्ट्रियन हूं, कब तक, ये शरीर तक, मरने के बाद पता नहीं किधर, भले महाराष्ट्र में होगा, कुत्ते हो गया बिल्ली हो गया तो उसको समझेगा भी नहीं कि महाराष्ट्र है ये। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं ये हूं, जो भी है सारे उपाधि शरीर से जुड़े, आप कुछ भी उपाधि बोलो, कृष्ण दास के अलावा कोई कोई भी उपाधि बोलो जो शाश्वत रहने वाला है। आप स्कूल में जाते हो तब तक आप विद्यार्थी हो, एक बार कॉलेज से निकल गए और जॉब मिल गया उसके बाद वो उपाधि चला गया। ये उपाधि जो है शरीर से जुड़ा हुआ है, सूक्ष्म और स्थूल शरीर से जुड़ा हुआ है। पर जो समझ जाता है कि ये उपाधियां ठीक है, जब ऑफिस में हूं तो मेरा एक डिजिग्नेशन है, एक उपाधि है, जैसा 5 बजे ऑफिस से बाहर निकला उस समय बॉस नहीं बोल सकता नहीं ये उपाधि नहीं है, वो उपाधि वही हो गया बस छोड़ दिया उधर। इस तरह से जब व्यक्ति समझ जाता है लब्ध आत्मा और उस स्तर पर काम करता है, हमेशा कार्यरत होता है, सर्वप्रथम मैं कृष्ण का दास हूं, पर अभी ये आत्मा एक शरीर में है और इस शरीर में होने के कारण इस शरीर के साथ जो मेरे जवाबदारियां हैं परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, उन सबको मैं निभा रहा हूं, पर ये निभाते हुए वो लक्ष्य, वो जो उपाधि है, जो मेरा मुख्य उपाधि है, वो नहीं भूलना चाहिए। पर कभी कभी क्योंकि हम मुक्त आत्मा नहीं है, दूसरी उपाधियां प्रामुख्यता दे देती हैं, दूसरी उपाधियों को हम प्रामुख्यता देकर मूल उपाधि को हम भूल जाते हैं, उसको कहते हैं विस्मरण, विस्मरण हो जाना, और इतने मग्न हो जाते हैं दूसरे उपाधियों में। इसीलिए भक्ति का मतलब है परेण भक्ति भावेन, पराभक्ति का मतलब क्या है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, निर्मल, निर्मल मतलब अपना मूल स्वरूप। मल क्या है, रजो तमो और सत्गुण, इन गुणों के कारण हम अपने आप को यह समझ रहे वो समझ रहे। तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मल ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। अभी और एक प्रश्न आता है, बोले ठीक है प्रभु जी, अभी मेरे को अच्छी तरह समझ में आ गया, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा, और शरीर 3 गुणों से बना हुआ है, समझना आसान है बुद्धि से, वो भी समझना मुश्किल है आजकल, फिर भी 3 दिन गीता कोर्स सुन लिया तो कुछ तो समझ में आ गया शायद, ठीक है चलो समझा कि ऐसा है। फिर स्टार्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, समझना वो ठीक है मैं शरीर नहीं हूं आत्मा, पर उसको उतारना जीवन में ये सबसे बड़ी, सबसे बड़ा चैलेंज। और वो कैसे, किस तरह से होना चाहिए, उसी लिए साधना भक्ति। अर्जुन पूछता है गीता में, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ, स्थित प्रज्ञ जिसका प्रज्ञ दासत्व भाव में स्थित है उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। उसका प्रज्ञ जो उसकी बुद्धि जो है भ्रमित नहीं होती। एक बार बोलता है कृष्णदास हूं, दूसरे बोलता है माया का दास हूं, मैं देश का दास हूं, इसका दास हूं, उसका दास हूं, नहीं। स्थित प्रज्ञ मतलब जिसकी बुद्धि फिक्स्ड है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है सबसे पहले। तो चलता कैसा है, बैठता कैसा है, बोलता कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी उसका आचार विचार कैसा है, पूछता है अर्जुन। क्योंकि पहचानेंगे कैसे ना, कोई भी कह सकता है मैं आत्म साक्षात्कार हूं, कहना बड़ा आसान है। एक भक्त आंख में बोले प्रभु जी ऑलमोस्ट प्योर डिवोटी हूं मैं विषय। छह महीने तक भक्ति किया, 5 महीने के बाद 16 माला में आए हो, और 6ठे महीने में आके बोले प्रभु जी काम क्रोध हो गया, थोड़ा मात्सर्य शायद होगा, थोड़ा पॉलिश करना बाकी है, 2 महीने में शायद। मैं बोला काम क्रोध लोभ हो तो छोड़ो, मोह बढ़ गया तेरे को, सबसे बड़ा मोह है कि तू शुद्ध भक्त हो गया है। उससे नहीं बोला, अच्छी तरह से समझाया उनको, इतना आसान नहीं है प्रभु, ये ऊपर ऊपर से घास खींचा पर आपने, ये कांग्रेस ग्रास है, फिर से निकलेगा, बारिश आएगा तो फिर से निकलेगा। तो ऐसा लगता है, कहना बड़ा आसान है कि मैं मुक्तात्मा हो गया, तो उसका लक्षण क्या है। तो गीता में भगवान बहुत सुंदर से समझाते हैं। एक चीज जो महत्वपूर्ण आज के लिए, मुक्त बंधन शारीरिक स्तर पर, यदा संहरते चायम कूर्मोंगानी व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। यदा संहरते, संहरते मतलब पीछे ले लेना, च अयम कूर्मः अंगानी इव सर्वशः, कूर्म मतलब कछुआ। आपने कछुआ को देखा है कभी? कछुआ की एक खासियत है, आराम से घूमता रहता है, और उसके कोई लगा कि कोई शत्रु आ गया तो सीधा, कछुआ इतना धीरे चलता है ना, कोई भी उसको हरा सकता है रेस में, चींटी भी हरा सकता है। तो बेचारा, उसको एक बड़ा वीक पॉइंट है उसका, कोई उसके पीछे पड़ गया तो उसको ओवरटेक इजीली कर सकता है। तो इसीलिए भगवान ने बोला ओवरटेक नहीं, अभी अंडरटेक, अंदर ले ले बस। कोई भी पास आ गया और तेरे को अंदर घुस जाना बस, कवच दे दिया, ऐसा कवच कर्ण जैसा, भेद नहीं सकते, और अंदर घुस के बैठ गया तो हाथी भी उसके ऊपर मारा कुछ नहीं होता, ऐसा फर्स्ट क्लास प्रोटेक्शन दे दिया उसको। तो उसकी खासियत यह है, जब भी वो शत्रु को देखता है, जब भी खतरा देखता है, अंदर ले लेता है वो, और जब देखता है कि सुरक्षित है फिर बाहर निकालता है, सर दो पैर दो और हाथ, हाथ या वही पैर ही चार पैर, तो पांचों टांग करके निकल जाते बाहर। बोले इस तरह से एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति जब देखता है कि मेरे आंखों के लिए कुछ प्रतिकूल वस्तु सामने है तो अंदर खींच लेता हूं आंख को, कान के लिए कुछ प्रतिकूल आवाज आ रहा है खींच लेता अंदर, कोई भी चीज प्रतिकूल है तो अंदर खींच लेता है। तो आप बोलेंगे प्रभु जी अंदर कैसे खींचे, हम थोड़ी योगी है कि इसको घुसा के ज्यादा से ज्यादा ऐसा हटाकर अंदर कर सकते हैं, शर्ट में से निकाल के ऊपर से, कुछ लोग पहनते ना ऊपर से शर्ट पहन ले, दो हाथ ऐसा झूलता है, अंदर कैसे करेंगे? ठीक है हाथ को अंदर कर सकते थोड़ा, आंख को अंदर कैसे करे, कान को अंदर कैसे करे? हमारे राष्ट्रपिता ने एक आदर्श उदाहरण दिया, बापूजी के 3 बंदर थे, आंख बंद, मुंह बंद, कान बंद। प्रैक्टिकल है पर थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है, सब बंद किया तो काम कैसे चलेगा, क्योंकि कलयुग में पूरा वातावरण ही प्रतिकूल है, हमेशा आंख बंद करके ही रखना पड़ेगा, खोलने की तो संभावना ही नहीं है। और बोले जब अनुकूल परिस्थिति हो तो खोल देना चाहिए एकदम बाहर। इसलिए आप देखेंगे मंदिरों के सामने ना वो कछुआ रखा गया। कोई भी मंदिर पुराने मंदिरों में जाएंगे तो भगवान के सामने वो कछुआ है, पूरा हाथ पैर सब बाहर है उसका। बोले ये जगह में खोलो, ये अनुकूल जगह है। आंखों से भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करो, सबई मन कृष्ण पदार अरविंद यो वाचाम से, यहां आके मुंह खोलो, प्रवचन के समय नहीं, कीर्तन के समय। प्रवचन के समय जो खोला है उसको सुनो बस। कान खोलो प्रवचन के समय, कान खोलो कीर्तन के समय, मुंह खोलो और गुरु पूजा के समय हाथ पैर भी खोलो, बुद्धि को भी खोलो, नो प्रॉब्लम। दिस इज द टाइम टू ओपन अप, क्योंकि सब अनुकूल चीज है, स्पॉन्ज जैसा उसको ग्रहण करो। पर बाहर जाने के बाद अंदर, और अंदर लेने का मतलब है मन उसमें नहीं लगाना, मन उसमें नहीं लगाना, मतलब नो कॉन्टेम्पलेशन। ध्यायतो विषयान पुंसः, विषय लग रहा है बट उसकी चिंता भी नहीं, ध्यान नहीं करना। और जितना हो सके हमको ध्यान करना ही नहीं, उधर तो जाना क्यों है, सामने बैठ के नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, नहीं वो जाओ ही मत ऐसी जगह प्रतिकूल जगह में सबसे पहले, और बाय चांस वो प्रतिकूल वस्तु आ ही गया आंखों के सामने तो क्या करेंगे। और फिर ऐसी जगह में जहां आंख बंद भी नहीं कर सकते, चल रहे हैं गाड़ी चला रहे हैं और सामने कुछ वस्तु आ गया तो बंद किया तो मुश्किल हो जाएगा आंखें। ध्यान मत दो, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते, तुरंत क्या फिर ध्यान क्या करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम राम, विथड्रॉ। और ये अभ्यास कैसे करना है, सुबह उठ के यही अभ्यास है हमारा, हरे कृष्ण कम से कम जपते वक्त तो मन को अंदर लो हरि नाम के ऊपर, लेना ध्यान, लेना और ध्यान लगाना। जिसको अभ्यास हुआ है वो जब चाहे इंद्रियों को अंदर ले सकता है, जिसका आदत नहीं है ना आंख फाड़ फाड़ के हरे कृष्णा बोलते रहेगा पर ध्यान कहीं और रहेगा, हरे कृष्णा कृष्ण राम राम चले जाएंगे, ध्यान बढ़ जाएगा। पर अगर आदत हुआ है तो कुछ लोगों को कसरत करके आदत है, कसरत किया हुआ, जितना हम कसरत करते हैं ना उतना प्रतिकार शक्ति बढ़ती है शरीर की, बीमार नहीं होता, ये सत्य है। जितना शरीर कसरत किया हुआ है उतना उसके अंदर प्रतिकार शक्ति है, लड़ने की शक्ति है, और इसीलिए बीमार नहीं पड़ता आदमी। इसी तरह से मन का कसरत है जप, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यै तद् आत्मनैव वशं नयेत्। मन इधर जाता है हरे कृष्ण राम राम हरे, लाना जहां भी जाएगा लाना उसको, ध्यान देना ध्यान देना। अष्टांग योग का यही मतलब है, यम नियम प्राणायाम और प्रत्याहार अंदर लाना, जहां जहां मन जाता है ना, यम नियम आसन और प्राणायाम और प्रत्याहार ये जो है मन को बाहर जाने से अंदर लाना। मन का दो काम है, जहां चाहिए वहां ध्यान लगाना और जहां नहीं चाहिए वहां से उसको हटाना। पर हमारा समस्या जहां चाहिए वहां लगता नहीं, जहां नहीं चाहिए वहां भागता है, यह हमारी समस्या है जो बद्ध आत्मा है। और इसीलिए अभ्यास, अगर अभ्यास करेंगे कम से कम जप के समय जहां भी मन जाएगा उसको लेना, हमको आदत हो गया जहां भी जाएगा मन को लाना 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 आदत हो गया कसरत कर करके कर करके, और जब भी ऐसा कुछ भी समस्या आया, मृत्यु के समय भी डर है ये है कुछ भी है, हरे कृष्णा बोला तो फिर से, क्योंकि आदत है पूरा। जैसे जिस बच्चे ने जिस विद्यार्थी ने पूरे साल भर अपना रेगुलर होमवर्क किया है, उसको सडनली बोले ए सुबह सुबह एक दिन आया और बोला आज तुम लोगों का अंतिम परीक्षा है फाइनल एग्जाम बिना नोटिस के, तो दो तीन लोग तो बेहोश हो ही जाएंगे उधर एग्जाम से पहले ही फेल। पर जो रेगुलरली प्रयास किया ठीक है हमेशा मैं तैयार हूं, तो जो रेगुलरली तैयार किया है उसके लिए बहुत आसान है। कितना भी बड़ा संघर्ष, बड़ा भी वस्तु हो जो बाहर खींच रखता है, हरे कृष्ण, हमारे देवामृत स्वामी महाराज नित्यानंद त्रयोदशी, उन्होंने एक अच्छा, बहुत अच्छा चीज बोला। नित्यानंद प्रभु की गुणगान कर रहे थे, नित्यानंद बलराम है वो, बहुत शक्तिशाली है वो बोलते हैं, खास करके अमेरिका में ऐसे डिस्ट्रैक्शन इतने सारे हैं, वहां प्रलोभन इतने सारे हैं, वो एक ही काम करते हैं। जब भी ऐसा मन इधर उधर जाता है, वो बोल रहे थे ब्रह्मचारियों को, बोल रहे थे, बोले नित्यानंद, पूरा जोर से चिल्लाना नहीं, मतलब अंदर से चिल्लाना, मन चिल्लाना चाहिए, हे नित्यानंद। कुछ जोर से चिल्लाएंगे तो शायद आसपास में, एक बार प्लेन में उन्होंने ऐसा अनुभव किया तो इतना जोर से बोले तुरंत, क्योंकि आदत हुआ है, फिर से मन वापस आ सकता है। और इसकी अंतिम परीक्षा कब होगी? अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। कोई संशय नहीं है, जो अभ्यास किया है उसको फाइनल एग्जाम कभी भी आ जाए, हरे कृष्णा, अंदर ले सकता है। और नहीं भी है तो भक्त लोग भी लेंगे तो चला, ध्यान हो सकता है उसका, क्योंकि इतना अभ्यास है। स्वाभाविक रूप से हरिनाम लेना, फिसल के गिरा तो हरे कृष्ण, कुछ सर के ऊपर गिरा तो हरे कृष्ण, बोल बोल के आदत है, कुछ भी आएगा तो, यमदूत भी आ गए तो हरे कृष्ण बोले तो वो भी जाएंगे और हम भी ऊपर जाएंगे, डर के मारे वो चले जाएंगे, हम सही दिशा में जाएंगे। आदत हुआ है तो, पर आदत नहीं हुआ है, यम यम वाति स्मरण भावम चित्यन्ते कलेवरम। तो ये जो अभ्यास है श्रद्धालु भक्तों के संग में अगर करते हैं, ऐसा लगता है कि इतने साल से कर रहा हूं, कुछ हो रहा है क्या? कभी कभी ये वैसे मन में, मन, ये मन का दूसरा बुद्धि का ये लक्षण है, संशय, संशय आत्मा, कुछ हो रहा है क्या, कुछ बढ़ रहा है क्या, प्रगति हो रहा है क्या? पर नहीं, हमें विश्वास होनी चाहिए, पराभक्ति परेण भक्ति भावेन। और तब जब भी, हर समय, हर क्षण, जब चाहे हम उसको लाकर भगवान के चरणों में रख सकते हैं। इनफैक्ट इनफैक्ट भक्ति योग इतना महान है कि अपने आप भक्ति योगी जो है, अपने आप सर्वश्रेष्ठ कर्म योगी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान योगी और सर्वश्रेष्ठ अष्टांग योगी बन जाता है। कैसे? सर्वश्रेष्ठ कर्म योगी, क्यों? यद करोषि यद अश्नाषि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुषु मदर्पणम्। वो हमेशा जो भी करता है वो भगवान की इच्छा के अनुसार, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, तो बेस्ट कर्म योगी बन गया वो। ज्ञान, ज्ञान की परिपूर्णता क्या है? बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, भगवान की शरण जाना, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान योगी हो गया। अब सबसे श्रेष्ठ अष्टांग योगी है ध्यान। एक बार ध्यान लगा दिया, उसको उल्टा पलटा करो, सर काटो, पर उसका ध्यान हिलेगा नहीं। अर्जुन युद्ध भूमि में भी सबसे समाधि में था, वो समाधि में था। प्रभुपाद जैसे व्यक्ति हम देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ योगी, अमेरिका गए वृंदावन छोड़कर, और वहां की परिस्थिति कैसी थी, फिर वहां क्या क्या लड़ाई लड़ना पड़ा बंबई में व्यक्ति से जो गुंडा को लेके आया था और मंदिर तोड़वाना ये वो प्रयास कर रहा था, पूरा रूप से ध्यान कर रहे हैं, पर सब कृष्ण के लिए। उनको एक क्षण के लिए भी उनका मन कृष्ण से या गुरु की सेवा से इधर उधर नहीं हुआ। ये परिपूर्णता है। भले हम यम नियम प्राणायाम आसान नहीं कर रहे हैं, बट भक्ति जो है परम ध्यान योग है, परम कर्म योग है, परम भक्ति, परम ज्ञान योग है अपने आप में। तो इस तरह से लब्धात्मा मुक्त बंधन है। बहुत सुंदर से कर्दम मुनि यहां वर्णन किया गया है कि उस स्थिति को, क्योंकि उन्होंने जीवन भर इस प्रकार से कार्य किए थे, उनके लिए बहुत आसान हो गया। हरे कृष्णा। किसी का एक या एक प्रश्न लेंगे, सबको सुनाई देना। ये स्वाभाविक है क्योंकि ये आदत जो है स्वाभाविक रूप से नैसर्गिक रूप से मन या इंद्रियां विषय भोग की ओर जाना करोड़ों करोड़ों जन्मों से हमारा आदत है, तो इतना आसानी से नहीं जाने वाला, आसानी से नहीं जाने वाला, स्वाभाविक है। पर भगवान की भक्ति और भक्ति की शक्ति, भगवान की कृपा अपने प्रयास से अगर हम देखेंगे तो नामुमकिन है। एक चिड़िया समुद्र को खाली करने के बराबर है। मन को नियंत्रण करना, हमारा मन यानी उस चिड़िया के अंडे, और वो समुद्र मन है, भौतिक मन। उस मन ने हमारे ध्यान को ले लिया और हम उसे वापस लेना चाहते, और हमारा प्रयास कैसा है उस चिड़िया समुद्र को खत्म करने की। पर उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात संग त्यागात सतो वृत्ते षड्भिर् भक्ति प्रसिद्ध्यति। पर अगर ये छह चीज जो अनुकूल हैं इनको अपनाएंगे, उत्साहात, उत्साह कैसे आएगा जब हम निश्चय, हमको पूरा विश्वास है कि इसका परिणाम क्या है, श्रद्धा से उत्साह आता है। जहां श्रद्धा है वहां उत्साह है, अगर श्रद्धा नहीं है ना तो निरुत्साहित हो जाएंगे हम। अगर मुझे मालूम है, जैसे कोलंबस, कोलंबस जैसे निकला अमेरिका को ढूंढने, तो लोग कह रहे थे पृथ्वी सपाट है, उसके बाद गिर जाओगे तुम कहीं जाके, तो उसके ये क्या बोलते हैं नाव वाले सब लोग डर रहे थे, बोला पागल इसको मार देते ना तो ये भी हमको भी खड्डा में गिराएगा। पर कोलंबस को विश्वास था कि पृथ्वी गोल है, हम लोग गिरेंगे नहीं, पूरा विश्वास था, इसीलिए उत्साह कमी नहीं हुई। उत्साह कब चला जाता है, जब हमें निश्चय नहीं है कि सही मार्ग पे है कि नहीं। तो सही मार्ग पे है समय की बात है, इसीलिए धैर्य, धीरज नहीं खोना चाहिए। अरे इतना साल फिर भी नहीं आया, नहीं होगा, होगा, प्रोसेस इज परफेक्ट। पर तत्त कर्म प्रवर्तनात, तत्त कर्म मतलब जैसा बताया गया उस तरह से ध्यान पूर्वक निरपराध भाव से, ये दो चीज कम से कम, एक जितना हो सके उतना ध्यान पूर्वक, जितना हो सके उतना निरपराध भाव से अनुकूल, जितना हो सके उतना अनुकूल तरह से करना तत्त कर्म प्रवर्तन। फिर संग त्यागात, ऐसे चीज मतलब आग लगा रहे उसके ऊपर कोई भी चीज, पानी मत डालना बस। अगर आपको आग लगाना है पानी ऊपर में छिड़कना नहीं चाहिए, सुबह आग लगाते हैं शाम को पानी छिड़कते हैं, सुबह आग लगाते हैं शाम को पानी छिड़कते हैं, फिर कितने सालों के बाद भी वही रहेगा। तो संग त्यागा, जो भी अनु प्रतिकूल चीजें उसको धीरे 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 कम करते जाओ। सतो वृत्ति है महाजनो ये नगत सपंथा, साधु वृत्ति, ये वृत्ति दो प्रकार की होती है, गृहस्थ वृत्ति और एक वैरागी वृत्ति। और चैतन्य महाप्रभु के शिष्य अनुयायियों में गृहस्थ भी थे और वैरागी भी थे। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने जो गृहस्थों को कूर्म ब्राह्मण को दिया, श्रीवास ठाकुर को दिया, शिवानंद सेन को दिया। जब भी वो जगन्नाथपुरी में लोग आते थे, वो जाते थे तो पूछते थे एक वैष्णव का लक्षण क्या है, वैष्णव को क्या करना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने गृहस्थ अनुयायियों को तीन प्रकार के इंस्ट्रक्शंस महाप्रभु ने दिया है। वैरागियों के लिए कुछ दिया है, गृहस्थों के लिए कुछ दिया है, और भक्तों के लिए कुछ दिया है। तो भक्तों के लिए जो लिया है वो सबके लिए लागू है, वैष्णवों के लिए हरि नाम लेना वो सबके लिए लागू है। गृहस्थों के लिए कुछ चीजें बताएं और वैरागियों के लिए कुछ चीजें बताएं। तो जो वैष्णव के लिए दिया हुआ है वो तो हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए, और उसके अलावा किस तरह से महाप्रभु ने गृहस्थों को, उनकी जीवनी पढ़ो, उनको किस प्रकार से महाप्रभु ने शिक्षण दिया उसका अध्ययन करो, प्रभुपाद जी के उसके तात्पर्य पढ़ो। तो इस तरह से क्या बोलते हैं, महाजनो ये नगत सपन था, और वो पथ जो है बहुत सुलभ और राजमार्ग है भक्ति के लिए। तो ये सब अनुकूल चीजों को अपनाते रहो, फिर धीरज खोने की जरूरत नहीं, ठीक होगा। ये भी एक बुद्धि का दो क्या बोलते हैं बीमारी है, एक संशय करना और दूसरा धीरज खोना, बोल रहे हैं दृढ़ता। दृढ़ता और संशय ये बुद्धि का लक्षण है। संशय करना, बुद्धिमान व्यक्ति संशय करता है, बुद्धिमान व्यक्ति प्रश्न पूछता है। कम बुद्धि वाला बोलता है ठीक है काला है क्या, दीवाल क्या है काला, काला है क्यों, तूने बोला इसीलिए काला होगा, सफेद दिख रहा है मेरे को, बुद्धिमान व्यक्ति प्रश्न पूछेगा। तो प्रश्न पूछना, संशय आना बुद्धिमता का लक्षण है, पर अति बुद्धि कब है, जब अधिकृत व्यक्ति से सुनने के बाद भी आसा कासा, ये अति बुद्धि। अधिकृत व्यक्ति पे सुनने तक ठीक है, वो भौतिक बुद्धि है, व्यवसाय आत्मिक का बुद्धि नहीं। और जहां तक दृढ़ता का सवाल है, मनसस्तु पराभूय, मन कुछ भी बोले बुद्धि के द्वारा उसको शू एंड ब्रूम ट्रीटमेंट, चप्पल और झाड़ू ट्रीटमेंट, आता ना को नंतर चोप, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की निधाय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्ण, धन्यवाद।